ओम शांति। हम सभी बाबा के विशेष सेवाधारी ग्रुप में आए हुए भाई बहने जिन्होंने सेवा की जिम्मेवारी ली है, सेवा के लिए अपने कीमती समय को निकाला है, सेवा किस प्रकार से हम सभी कर रहे हैं, यूं तो बाबा ने हम सभी को ये बताया ही है और हम सभी ने समझा इस बात को, हमारा संपूर्ण जीवन ही सेवा के लिए है। लेकिन उस सेवा के जीवन में से कुछ विशेष दिन अपने जोन के साथ संगठित रूप से मिल करके विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में हम सभी सहयोगी बनते हैं, सेवा का अवसर लेते हैं। हम सभी को जो हमारे वरिष्ठ, हमारी दादियां हमें सेवा का ये अवसर प्रदान करते हैं, इस अवसर को हम सभी लेते हैं और अपने भाग्य को बनाते हैं। लेकिन कम समय में ज्यादा हमारा भाग्य बन जाए, हमारा हर क्षण सफल हो जाए, हमारे हर पल में पुण्य की कमाई हमारी जमा होती रहे और हमें ये महसूस होने लगे कि जिस लक्ष्य को लेकर के हम मधुबन बाबा के घर में आए थे वह लक्ष्य हमारा पूरा हो गया है या हम भरपूर हो गए हैं, उसके लिए हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी स्थिति भी अच्छी बनी रहे और सेवा भी श्रीमत प्रमाण होती रहे और दोनों का बैलेंस बन जाए। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, स्वस्थिति और सेवा दोनों का जो बच्चे बैलेंस बना करके चलते हैं उन्हें सेवा में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि स्वस्थिति से खुशी मेंटेन रहती है, शक्तियां भरपूर रहती हैं और जो हमारे पास होता है वो हम दूसरों को सहज दे सकते हैं, दूसरों को देने से हमारा और खजाना, हमारी खुशी और बढ़ जाती है। लेकिन यह शब्द आता है स्वस्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस। बैलेंस शब्द ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा आर्ट है बैलेंस। आप दुनिया में भी देखते हैं जैसे कुछ लोग सर्कस करते हैं, सर्कस में भाग लेते हैं, उसमें कार्य करते हैं, आपने अनेकों बार देखा होगा भिन्न भिन्न प्रकार से वो अपने बैलेंस का प्रदर्शन करते हैं। यदि आपने देखा हो जैसे एक पतली सी रस्सी वो लगा देते हैं बहुत ऊंचाई पर और उस पतली सी रस्सी पर व्यक्ति चलता है, अब रस्सी पर पूरा एक व्यक्ति जिसका इतना वेट है उस पर चलता है तो बैलेंस बना करके चलता है, क्योंकि बैलेंस रखता है वो एक आर्ट है और उस आर्ट को देखने के लिए हम धन खर्च करके भी जाते हैं, क्योंकि वो एक कला है, क्योंकि वो एक आर्ट है। आपने ऐसा भी देखा होगा, एक ही बाइक पर 10-15 व्यक्ति एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब वहां वो कला क्या दिखाते हैं? बैलेंस की कला दिखाते हैं। अनेकों हठ योगियों को आपने देखा होगा, कोई कोई हठ योगी एक टांग पर कितने घंटे तक खड़े रहते हैं, बैलेंस बना करके खड़े रहते हैं। अनेक प्रकार के लोग आसन करते हैं, उसमें भी बैलेंस का ध्यान रखते हैं। पर आप पाएंगे जहां भी जिस भी प्रकार का बैलेंस होता है, चाहे वो जिस्मानी बैलेंस ही हो, तो भी वो एक कला है और उस कला को उसकी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे देखा जाता है, उसके लिए क्लैपिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि वो आर्ट है, कला है। अब वह कला जिस्मानी कला है, उस जिस्मानी कला से भी धन कमा सकता है व्यक्ति। बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर कला सिखाई है, बहुत सुंदर बैलेंस सिखाया है। कितने प्रकार के बैलेंस के लिए बाबा ने हमें आज्ञा श्रीमत दी है। आप सभी प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने हमें कहा है कि आप ग्रस्त में रहते हैं, पर ग्रस्त में भले रहो लेकिन ट्रस्टी बन करके रहो। ग्रस्त में रहते भी बोझधारी नहीं बनो, चिंता में नहीं रहो, लेकिन सदा हल्के रहो, सदा न्यारे रहो, फंसो नहीं। रहना है चिंता वाले वातावरण में, रहना है इस नरक की दुनिया में, लेकिन हमें बैलेंस क्या बनाना है कि हमें अपनी बुद्धि को संगम युगी या सत्युगी बनाकर रखना है। ग्रस्त में रहकर ट्रस्टी बनकर रहना, ये बाबा ने हमको बैलेंस सिखाया है। बाबा ने हमको ये भी कहा कि बच्चे आप गंभीर भी रहो, लेकिन गंभीर का अर्थ इतने सीरियस नहीं हो जाओ कि जो किसी दूसरे को आपके नजदीक आने में डर लगने लगे, लेकिन गंभीरता और रमणीकता उसका भी आप बैलेंस रखो। बाबा ने कहा बिजनेस भी करो, अपना कार्य व्यवहार करो, लेकिन व्यवहार करते हुए भी, कार्य करते हुए भी कर्म योगी बन करके रहो। भिन्न भिन्न प्रकार की बैलेंस की बात बाबा ने हमें समय प्रति समय बताई है, समझाई है। क्यों? क्योंकि बैलेंस अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है, और बैलेंस एक चुनौती भी है, एक चैलेंज है। जैसे रस्सी पे सब तो नहीं चल सकते, अंदर में भय भी रहता है, ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, हिम्मत रखते हैं कि हम चलेंगे। और जब वो चलने की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, करते करते परफेक्ट बन जाते हैं। लेकिन हिम्मत रखी, निर्भय रहे और उस चुनौती को स्वीकार किया, तब वो बैलेंस की कला को सीख पाए। वैसे ही बाबा ने हमें जो बैलेंस की बात कही है, हमें भी उस चुनौती को स्वीकार करना है। जब किसी भी चीज को हम मन से स्वीकार कर लेते हैं, उस कार्य को करना बहुत सहज हो जाता है। पहले स्वीकार करना है मन को। जैसे मान लीजिए अभी मधुबन में ही आना है, कईयों को यात्रा करना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि यात्रा में इतना सामान लेके जाना पड़ेगा, मालूम नहीं कमरा कैसे मिलेगा, मालूम नहीं भोजन इतने बड़े संगठन में कैसे मिलेगा, अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं। लेकिन जब मन में इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमें तो बाप दादा से मिलन मनाना ही है, हमें जो अवसर मिला है इस अवसर को चूकने नहीं देना, हमें तो वहां जाकर कमाई करनी ही है, हमने तो बेहद घर में बेहद परिवार में जाना ही है, स्वीकार कर लिया। जब इस बात को स्वीकार करते हैं तो हम सभी खुद ही अपनी बहनों को रिक्वेस्ट करते हैं, 4 महीने पहले ही दीदी हमारी रिजर्वेशन आप जरूर करा देना। हमें खुशी होती है, हमारे अंदर उमंग होता है, हम उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कारण क्या? क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया कि इस बीच में जो भी होगा हमें स्वीकार है, परंतु हमें तो बाप दादा से मिलना ही है। तो बैलेंस अपने आप में कला और एक चुनौती है। तो हम सभी भी बैलेंस बनाने के लिए, सेवा करने के लिए और सेवा में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, दोनों के बैलेंस की कला को प्रैक्टिकल करने के लिए, उसका फायदा देखने के लिए, उस अनुभव के द्वारा अनुभवी बनने के लिए या विशेष रूप से आते हैं। अब जब हम सेवा करते हैं, सेवा के फायदों को भी हम जानते हैं, इसीलिए हम आते हैं। हम ये जानते हैं कि जितनी सेवा हम करते हैं उतना मेवा, उतना फल हमको मिलता है। बाबा हमको संगम युग पर प्रत्यक्ष फल देते हैं। सेवा करते हैं तो कितने बड़े परिवार से हमारा मिलन हो जाता है, हमको ये आभास हो जाता है कि हम कोई छोटे से परिवार के सदस्य नहीं हैं, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। पूरे विश्व में हम कहीं भी चले जाएं, सब जगह हमारे घर हैं, सब जगह हमारे भाई बहने बैठे हुए हैं। तो सेवा से जो फल मिलता है, सेवा से दुआएं मिलती हैं, सेवा से हमारा खजाने का खाता बढ़ता है, सेवा से हम अनेक प्रकार के व्यर्थ चिंतनों से, व्यर्थ बातों से बच जाते हैं। सेवा में जितना बिजी रहते हैं और कोई फालतू ख्याल आने की फुर्सत ही नहीं है कुछ और सोचें, क्यों? क्योंकि हम सेवा में बिजी हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सेवा से हमें बहुत बल मिलता है। अब जो बल मिलता है, फल मिलता है, कैसे मिलता है? सेवा करते वक्त हमारी मन की भावना क्या काम करती है, मन के संकल्प क्या सोच रहे हैं, उसके आधार से हमें मार्क्स मिलते हैं। इसलिए सेवा करते हुए हम सभी को अपने मन की स्थिति, मन के भाव बहुत श्रेष्ठ रखने चाहिए। बाबनी का मन की श्रेष्ठ स्थिति ही सर्वोत्तम सेवा है। सेवा की सफलता ही हमें तब मिलती है जब हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है। अब हमें जब सेवा करनी है, बाबा ने हमको बताया कि आप मन वचन कर्म तन मन धन संबंध संपर्क व्यवहार अपनी पर्सनालिटी सबसे सेवा कर सकते हो। अब जब हम कहते हैं मन वचन कर्म, मन का सोच, सोचने का तरीका, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आए, हम किसी भी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, चाहे हम भोजन विभाग में हैं, चाहे हम आवास निवास विभाग में हैं, चाहे हम अन्य किसी भी विभाग में सेवा कर रहे हैं, हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को देखते ही हमारे नैनों में क्या भाव आए, देखने का कार्य आंखें करती हैं, कर रही हैं, लेकिन अंदर में मन का सोच क्या चले, जिससे मेरा दुआओं का खाता ज्यादा जमा हो, मेरी सेवा का बैलेंस और स्थिति भी मेरी ऊंची बनी रहे। उस समय उस व्यक्ति को देखते हुए यदि हम ये सोचते हैं कि आत्मा भगवान का बच्चा भगवान के घर में आया है, ये अपनी झोली भरने के लिए आया है, उसके प्रति रहम का भाव, मैं दाता का बच्चा हूँ, मुझे इस आत्मा को कुछ न कुछ देना है, यदि वो स्थूल में भी मेरे से कुछ मांग कर रहा है वह भी देना है, और यदि वो स्थूल में कुछ मांग नहीं रहा है लेकिन फिर भी मेरे सामने आया है और मैं सेवाधारी हूँ, तो मेरी दृष्टि ऐसी दातापन वाली कि उस आत्मा को अपनी दृष्टि से ही हम निहाल कर दें और उस आत्मा के लिए सोचें कि इसका भी संबंध बाबा से और गहरा हो जाए। ये मेरा ही भाई, ये मेरी ही बहन है, ये मेरे बाबा के बच्चे हैं, ये भाव, और उस भाव के साथ हम उसको दृष्टि दें, तो हम पाएंगे देखने का कार्य तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा मन इतना शक्तिशाली, इतना खुश में अंदर में बन जाता है कि वो खुशी हमारे होठों पर आ जाती है, मुस्कुराहट के रूप में वो खुशी दिखाई देती है। तब बाबा ने हमें कहा कि इन नैनों से तो आप सेवा करो ही, लेकिन अभी इस मुख से भी आप सेवा करो। रोज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, रोज बाबा में कहता मीठे बच्चे मीठे बच्चे, तो मीठे बच्चे कहकर हमको बाबा मीठा बोलना सिखा रहा है, हमारा स्वभाव मीठा बना रहा है। तो जो मीठा स्वभाव हम सीख रहे हैं, पर इसको बांटना कहाँ है, जब हम सेवा के क्षेत्र पर हैं। ऐसा नहीं कि मीठे बच्चे बोलने वाली बात हमने सुना दी, किसी को हमने मुरली सुना दी, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा कि दूसरे को मीठा बच्चा समझो भी, बाबा ने ये भी कहा इस मुख से मीठी वाणी बोलो भी। अब मीठे मीठे शब्द जो बाबा की शिक्षा हमने सुने हैं, वो मुझे अपने जीवन में भी धारण करने हैं, और वो मीठी बोली जो बाबा ने बोलना सिखाई वही बोली दूसरों को सुनानी भी है। तो जब इस मुख से मीठी वाणी बोलते हैं, जिसके लिए कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपु शीतल होए, ऐसा मुख से वाणी बोलें जो दूसरे भी शीतल हो जाएं और हम खुद भी शीतल बन जाएं, दूसरे को महसूस हो कि सचमुच मैं सही जगह सही व्यक्ति के पास आ गया हूँ। हमारे मुख से ऐसे बोल न निकले जो द्वापर युग के ऋषि मुनियों के क्रोध के शब्द कहे गए हैं। लोग डरते हैं कि गुरुजी मुझे श्राप न दे दें, ये गुरुजी क्रोधित न हो जाएं, द्वापर युग के। लेकिन हम संगम युगी बाबा के बच्चे, हमारे बोल के द्वारा हर पल सेवा हो, हमें ये अटेंशन रखना है। वैसे ही बाबा ने कहा व्यवहार कर्म, किसी भी व्यक्ति की परख केवल उसके शब्दों से ही नहीं होती। कोई व्यक्ति शब्द बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत महान बड़े बड़े शब्द बोले, लेकिन व्यवहार में वो शब्द न दिखाई दें, तो कहते हैं कि भाई ये बोलते तो कुछ और हैं, इनकी कथनी तो कुछ और है पर करनी तो कुछ और है। तो सेवा कहाँ होगी जहाँ हमारी कथनी और करनी एक हो जाएगी, हमारे व्यवहार से भी सेवा हो। अगर व्यवहार में हमारे द्वारा किसी को सहयोग चाहिए, कोई हेल्प हमसे कोई चाह रहा है, छोटी छोटी हेल्प, देखिए मधुबन में ही हम आते हैं, अगर किसी को सहयोग चाहिए, अभी कोई बुजुर्ग माता है बिल्कुल नीचे नहीं बैठ सकती है, उसे कुर्सी की मदद चाहिए, भले कई बार तो एक दूसरे को देख के रीस में हम सोचते हैं सबको ही कुर्सी मिले, अब सबको तो नहीं मिल सकती, हम सभी समझते हैं इतना इतने बाबा के बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है, हमें एडजस्ट करना है। लेकिन कभी कभी हमें दिखाई देता है दूसरे की मजबूरी है, इसलिए दूसरा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वहां जो सहयोग का भाव जो व्यवहार में दिखाई दे, प्रैक्टिकल जो व्यवहार में वो सहयोग दिखाई देगा उससे सेवा होगी। तो बाबा ने भी कहा मन से भी करो, दृष्टि से भी करो, वृत्ति से भी करो, वचन से भी करो, कर्म से भी सेवा करो। फिर जब तन मन धन की बात आती है, इसमें भी मन, आप देखिए मन दोनों में आया है, मन वचन कर्म में पहले मन आया है, और जब तन मन धन कहते हैं तो भी मन बीच में आए, दोनों बार में मन आया है, महत्व है मन का। अब तन से भी हमें दूसरों की सेवा करनी है। बाबा ने एक चीज कही कि हमारी जो पर्सनालिटी दिखाई दे, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज हो, हमें कुछ शब्द बोलने की बात नहीं, लेकिन हमारी वेशभूषा दिखाई दे ब्राह्मण सदस्य की है, ब्राह्मण कुल भूषण की है, वो भी सेवा करती है। तो वो तन की सेवा भी है भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे यहाँ बहुत बार अनाउंसमेंट होती है कि आवश्यकता है रोटी विभाग में रोटी बेलने की, लेकिन हमें पता है हमारी सेवा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम है, हम सेवा कर चुके हैं, या सारे के सारे भाई बहने उस डिपार्टमेंट में सेवा के लिए गए भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी है, हम जा सकते हैं, क्यों नहीं हम इस तन को सफल कर लें। चाहे वह अनाज की सेवा, चाहे वह सब्जी कटिंग की सेवा, चाहे वो रोटी की सेवा, तन की सेवा का अवसर हमें यहाँ मिलता है। और बाबा ने हमको ये बताया, जब तक हम तन की सेवा नहीं करेंगे तब तक तन निरोगी नहीं बनेगा। तन निरोगी बनेगा तन को लगाने से, हड्डियां यज्ञ में स्वाहा करने से। तो यहां जब अवसर मिल रहा है तो हम उसे सेवा करें, वैसे ही फिर मन की बात और फिर उसके बाद धन की सेवा, तन मन धन। कई बार हम बाबा के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर तो इतना बड़ा बाबा का घर है, सारी सुविधाएं बाबा के घर में हैं, यहाँ मैं क्या करना है ज्यादा दे करके। लेकिन हम सभी इस बात को जानते हैं, ये बेहद का घर हमारा घर है, हमें इसको संवारना है, हमें इसको चलाना है, हम ही इसके जिम्मेवार हैं, और इस सेवा के द्वारा बादशाही भी हम ही पाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि धन दूसरे लगाएं और बादशाही मुझे मिल जाए, जो लगाएगा वही पाएगा, जितना लगाएगा उतना ही पाएगा, जिस भावना से लगाएगा उसी भावना का भाड़ा मिलेगा। तो हम कभी भी इसमें भी कंजूसी नहीं करें, ये भी नहीं कि दूसरे ने कर दिया तो मुझे करने की जरूरत नहीं, या दूसरे ने कम किया इसलिए मुझे भी कम करना है। इसमें हमें गुप्त सहयोगी बनना है, ज्यादा से ज्यादा बाबा के यज्ञ में हमको मदद करनी है। ये बाबा को मदद नहीं करनी, अपने आप को मदद करनी है। इससे हमारा दुआओं का खाता जमा होता है, अनेक प्रकार के विकर्म का खाता वो कट जाता है, बाबा हमारे लिए बंध जाता है कि इस बच्चे ने इतनी यज्ञ में सेवा की है, तो बाबा में मदद करता ही है, करेगा ही, बाबा 84 जन्मों के लिए गारंटी ले लेता है। वंडरफुल बात है, यहाँ जो हम सेवा करते हैं उसका फल हमें 84 जन्मों तक के लिए मिलता है। तो बाबा ने जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हमें सिखाई हैं, वो सेवा करने का प्रैक्टिकल अवसर हमें यहाँ मिलता है। अब ये सारी सेवाएं करते हुए मुख्य हमारी जो मन की स्थिति है वो कैसे अच्छी बनी रहे, उसके लिए सेवा करते वक्त हमेशा हम सब का हां जी का पाठ पक्का होना चाहिए। कौन कौन ऐसे भाई बहने हैं कि जब भी सेवा का अवसर मिले सदा हां जी करते हैं, हाथ खड़ा करेंगे? हां जी का पाठ किनका पक्का है? गुड। क्योंकि हम सभी जानते हैं, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम हां जी कह दें और हमसे वो सेवा हो नहीं सकती, या हमको सेवा करनी आती नहीं है। लेकिन यदि हम हां जी कह देते हैं तो बाबा हमें वो सेवा करना सिखाता है, सेवा करने का बल बाबा हमको दे देता है। लेकिन बाबा देखता है बच्चों ने हां जी तो कहा। लौकिक में अगर आप देखेंगे किसी कार्य के लिए यदि बच्चा हां कह देता है तो तो उस बच्चे का पिता सोचता है इस बच्चे ने इतने बड़े काम के लिए हाँ कह दिया है। तो अगर वो बच्चे की क्षमता नहीं है उस कार्य को करने की, पिता स्वयं अपने हाथ का सहयोग दे करके, उसे अपनी बुद्धि की मदद दे करके, उसे अपनी राय दे करके भी, उसे सिखा करके भी, उस बच्चे ने जो हाँ भरी उसे वो लायक बना देता है कि हाँ ये बच्चा, इसने हाँ कहा तो ये कार्य करे, इसके हाथ से काम हो जाए। तो पिता उसमें जिम्मेवार हो जाता है क्योंकि वो पिता है। वैसे ही जब हम सेवा के लिए जी हाँ कहते हैं, हाँ जी कहते हैं, तो बाबा बंधायमान हो जाता है कि इस बच्चे ने मेरी सेवा के लिए हाँ कहा है, इस बच्चे को मुझे लायक बनाना ही है। मान लीजिए प्रैक्टिकल ऐसा हम देखते अनुभव करते हैं, किसी किसी का शरीर साथ नहीं देता, कोई तकलीफ कोई बीमारी भी है, लेकिन उस बच्चे ने हाँ कह दिया, तो आप देखेंगे कि बाबा उसके तन को भी उस समय के लिए ठीक कर देता है, वो सेवा बाबा उस समय उसे करा देता है। हम अपनी बड़ी दादियों के अनुभव सुनते हैं, इतनी बड़ी आयु में दादियां कहां कहां देश विदेश में जाकर के सेवा करती हैं, जबकि शरीर की अवस्था तो ऊपर नीचे होती है, लेकिन क्योंकि उनका हांजी का पाठ इतना पक्का है तो निमित बन के बैठ जाते हैं, तो बाबा अपना सेवा कराता है। तो सेवाधारियों के मार्क्स तब जमा होते हैं जब वो हांजी का पाठ पक्का रखते हैं। दूसरी बात, सेवाधारी जब अपने आप को निमित समझते हैं कि मैं केवल निमित हूँ और कराने वाला तो बाबा है, कार्य बाबा का है, ज्ञान बाबा का है, चीज बाबा की है, हमें तो बाबा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, बाबा के द्वारा दिया गया ये वरदानी जीवन, बाबा ने जो भी हमें सिखाया, गुण दिए, योग्यताएं भरी, ये सब बाबा की देन है, दिया हुआ बाबा का वो हमने केवल बांटना है, वो हमने देना है, हम तो केवल निमित्त हैं। जब मन के सोच में आता है मैं केवल निमित्त हूँ और बाबा का ये, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सारी चीजें लेकर के आया, सेंटर पे दी और बोला दीदी ये मैं चीज लाया हूँ भोग के लिए, मान लो लाया हूँ, या मैं फल लाया हूँ, बाबा को भोग लगाना है और बाबा के बच्चों को ये भोग देना है, तो बहन क्या करती है, बाबा को भोग स्वीकार कराती है प्यार से और बाबा के सभी बच्चों को बांट देते हैं। अब लाया वह व्यक्ति, बाबा को ऑफर किया और बाबा के बच्चों को दिया, तो जो लाया सेवा का फल तो उसको मिलेगा, लेकिन साथ में बहन ने जिस विधि से, जिस प्यार की दृष्टि से, रूहानियत से जो दिया और ये समझ के दिया कि बाबा के बच्चे ने बाबा के लिए ये फल लाया है, मैं निमित्त हूँ, केवल इसमें रूहानियत भर के, स्नेह भर कर दूसरों को देने के लिए, तो जब रूहानियत भर दी तो बहन के मार्क्स जमा हो गए। जो भाई या बहन उस फल को, उस चीज को लाया, उसके लाने के मार्क्स जमा हो गए, लेकिन भावना में है कि बाबा के लिए है, बाबा का है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, लाने वाले में यदि अहंकार आ जाता है मैं लाया, तो जब मैं लाया मेरा तो है ही नहीं। मान लीजिए ज्ञान भी हम दूसरों को सुनाते हैं, बाबा का ही ज्ञान, चाहे मुरली के माध्यम से, चाहे अपने अनुभव के माध्यम से, यहाँ जनरल हम ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान किसका है? जब तक हम बाबा के नहीं बने थे तो हमारे पास भी तो ज्ञान नहीं था, हमारे अंदर भी तो वो योग्यताएं नहीं थी। बाबा ने वो योग्यताएं भरी, बाबा ने हमको ज्ञान दिया, बाबा ने हमारे अंदर वो गुण भरे, बाबा ने हमको सिखाया। तो सब देन किसकी है? बाबा की। और उस भगवान का, उस प्रभु का प्रसाद वो हम दूसरों को दे रहे हैं। और अगर हमारी बुद्धि में आ गया मैंने दिया, मैंने ज्ञान बहुत अच्छा सुनाया, तो मेरा तो है ही नहीं, दूसरे की चीज को अपना समझना वो तो रॉन्ग हो जाता है। बाबा का है ना, हम तो केवल ट्रस्टी हैं। बाबा ने जो दिया है वो हमें दूसरों को बांटना है। और अगर विधि पूर्वक भी नहीं बांटा, बांटा तो सही पर रूहानियत के बिना बांटा, तो हमारे मार्क्स जमा नहीं होंगे। मार्क्स केवल उसी के जमा हुए जो इस भाव से लाया कि मैं बाबा के लिए लाया हूँ, उसके मार्क्स तो जमा हो गए। लेकिन दूसरे ने अगर उस रूहानियत से नहीं दिया तो उसके मार्क्स जमा नहीं हुए। हमें क्या करना है? हर पल हर पग मेरी ऐसी मन की श्रेष्ठ भावना हो जो मेरी नस नस में रग रग में सेवा का भाव भरा हुआ हो। वह भाव तब आएगा जब हम अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे मैं केवल निमित्त हूँ। वो करावन हार है, मैं केवल करण हार हूँ। वो मेरे साथ है, उसकी दुआएं मेरे साथ हैं, उसका हाथ मेरे सिर पे है। ये ऊंची स्मृति, ये नशा, ये मन का सोच इतना अच्छा हो, और फिर बाहर से भले हम थोड़ी सी सेवा कर रहे हैं पर फिर भी हमारे मार्क्स बहुत जमा होते जाते हैं। मन की श्रेष्ठ स्थिति से सेवा होती है। बाबा ने हम सबको ये बात बताई है कि आप भले मुख के द्वारा कई, जैसे माताएं कहती हैं जो अनपढ़ हैं, बाबा हम तो अनपढ़ हैं, हमको तो उतना ज्ञान की पॉइंट्स याद नहीं रहती हैं, इसलिए हम दूसरों को सुना नहीं सकते हैं। पर बाबा उनको क्या कहता है कि आप केवल बाबा बाबा करते रहो और बाबा बाबा दूसरों को बोलते रहो। अब जब दिल से आप बाबा बाबा बोलते रहोगे, आपके द्वारा ये एक मीठा शब्द भी जो बोला, दिल से बोला, उससे भी दूसरों को तीर लग जाएगा, वो भी सेवा हो जाएगी, वो भी बाबा के नजदीक आ जाएगा। ये जरूरी नहीं बहुत ज्यादा समझाया तभी समझ में आएगा, नहीं, अगर केवल प्यार भरी भाषा बोली, बाबा वाली भाषा बोली, केवल मीठा बाबा मेरा बाबा बोला तो भी सेवा हो जाएगी, हमारे मार्क्स जमा हो जाएंगे। बाबा हमें हमेशा ही सिखाते हैं, बच्चे आप निमित्त होकर के बैठ जाओ, भले उस समय कोई आए कोई नहीं आए, लेकिन आप तो ऑन ड्यूटी पर उपस्थित हो। और जब आप उपस्थित हो गए तो आपके नंबर लगना तो शुरू हो गया। जब नंबर आपके लगना शुरू हो गया, किस आधार से? कि आप सेवा पर बैठ गए। जैसे मान लो हम लोग अमृत वेले या योग के लिए आते हैं, वही अमृत वेला लौकिक घरों में भी करते हैं, सेवा केंद्रों पर भी करते हैं, लेकिन जब हम अमृत वेले बैठ गए तो मन की स्थिति अच्छी होना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी कुछ भाई बहने सोचते हैं उस समय मेरे को नींद आती है क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोता या सोती हूँ, तो फायदा क्या बैठने का जब नींद ही आती है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे भले आपको अगर नींद भी आती है, एक दिन आएगी, दो दिन आएगी, सात दिन आएगी, नींद भी सोचेगी फिर भी मेरे पास आके बैठ जाते हैं तो नींद भी विदाई ले लेगी और बाबा तो हमारे मास्क लगा ही देगा कि ये कम से कम आके बैठ तो गए थे, मेरे से मिलन मनाने आए तो थे ही। थोड़े दिन के बाद हम पाएंगे नींद भी वह भी खत्म हो जाएगी। जब हमारे अंदर में बाबा के प्रति वो सच्चा प्यार होगा और दिन भर में हमारी मन की स्थिति बहुत ऊंची रहेगी, श्रेष्ठ स्थिति रहेगी, तो स्वाभाविक रीति से अमृत वेला अच्छा होगा। तो मास हमारे जमा हो जाएंगे। तो हम सभी सेवाधारियों को खास करके यहाँ पर आने के बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या बिल्कुल मर्यादित हो, श्रीमत प्रमाण हो। भले सेवा में हम बिजी रहें, लेकिन बाबा ने जो हमें कहा कि बिजी भी रहो और क्या साथ में इजी भी रहो। अगर कोई बच्चा बार बार ये कहता मैं बहुत बिजी, मैं बहुत बिजी, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते ये बार बार कहना मैं बिजी, तो ये तो गृहस्थी के बोल है मैं बिजी बिजी बोलना। लेकिन बिजी रहते भी हम इजी रहते, बैलेंस रखते हैं, क्योंकि बैलेंस किस आधार से? मन के अच्छे सोच के आधार से। हमें थकान भी होती है मन के सोच के आधार से। आप सभी अनुभवी हैं, यदि कोई रात को सोते वक्त पहले से ही सोच लेता है कि मैं आज अमृत वेले नहीं उठूंगी, क्यों नहीं उठूंगी? क्योंकि रात को मैं लेट सोई हूं। मैं अमृत वेले नहीं उठूंगी, क्यों नहीं उठूंगी? दिन भर मैंने बहुत काम किया है। अब देखिए मन के सोच में ही आलस्य है। मन के सोच में ही जब ये आलस्य आ गया तो फिर क्या होगा? सचमुच थकान होगी, सचमुच नींद इतनी ज्यादा आएगी कि हम बाबा से मिलन ही नहीं मना पाएंगे। लेकिन अगर रात को सोने के समय हम बाबा को अपने सारे बोझ, सारी बातें बाबा को दे करके सोते हैं, सब कुछ दे दिया रात को सोने से पहले बाबा को, जो हुआ जैसा हुआ, क्योंकि हम ऑर्डिनरी तो नहीं है, जैसा हुआ जो हुआ वो श्रीमद प्रमाण हमने किया, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई भूल हो गई, कहीं कोई त्रुटि रह गई, बाबा के आगे उसको बता के, या जो दिन भर में मैंने सेवा की जिस तरीके से कि वो बाबा को बता करके हम निश्चिंत हो करके सो गए, लेकिन सोने से पहले बाबा को बताया बाबा मैं सुबह आपके पास जरूर आऊंगी। तो हम सभी को ये अनुभव है कि हमारा अपना ही सोच हमें अथक बनाता है। हमारे अपने ही अच्छे मन के सोच से, अच्छी मन की स्थिति से हम चाहे पूरी रात भी न सोए हो तो भी हमारा अमृत वेला अच्छा होता है। लेकिन मन के सोच में अगर आलस्य आ जाता है तो फिर हमको क्लास में बैठे बैठे भी थकान हो जाती। कितने भाई बहने क्लास सुनते हुए, मुरली सुनते हुए भी नींद करते हैं, कारण मन का सोच वैसा बना लिया। लेकिन बाबा हमेशा हमको कहते हैं आपका मन का सोच बहुत उच्च क्वालिटी का हो। सेवा करते हुए किसी चीज की हम अपेक्षा नहीं रखें, मैंने सेवा की कोई मेरी प्रशंसा करे मैंने बहुत अच्छी सेवा की, और अगर किसी ने प्रशंसा नहीं की तो हम कहें अरे इतनी सारी सेवा करने का फायदा क्या, इतना इतना टाइम हमने लगाया, इतना धन हमने लगाया, इतनी सेवा की और बहन जी ने तो कुछ रिमार्क्स ही नहीं दी, कुछ कहा ही नहीं आपने, बहुत अच्छा किया। तो हमारा सेवा करते भाव क्या है? कि मेरी प्रशंसा हो। तो भाव के आधार से, भावना के आधार से मार्क्स मिलेंगे। तो केवल प्रशंसा कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो खुश हो जाएंगे और नहीं मिलेगी तो मूड ऑफ हो जाएगा। तो सेवा करने के बाद यदि मूड ऑफ हो गया, सेवा करने के बाद यदि उदासी आ गई, सेवा करने के बाद कोई चीज की तुलना और गिनती करने लगे, तो वो सेवा में मेरे मार्क्स जमा नहीं होंगे, वो सेवा नहीं है। लेकिन सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के जब हम सेवा करते हैं, तब हमें सेवा का फल मिलता है। और इतना फल मिलता है, सेवा का फल इतना अधिक मिलता है कि हमें ये महसूस होने लगे, जब मैंने सच्चे दिल से सेवा की, मुझे महसूस होने लगे कि मेरे पांव धरती पर नहीं है, मैं तो फरिश्ता बन गई हूँ, मेरे को खुशी का खजाना भरपूर मेरे को मिल गया है, मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया है, दिल में ऐसी गदगद, ऐसी गुदगुदी, ऐसा हल्कापन मेरे को महसूस हो, तब समझें कि मैंने सच्चे भावों से, श्रेष्ठ स्थिति से मैंने सेवा की। जब मेरी सेवा की ये सफलता, ये रिजल्ट मुझे दिखाई दे, और अगर वो रिजल्ट नहीं है तो चेक करना है कहाँ अभी गलतियां हैं। दूसरे को निरसंकल्प करना, खुद भी निरसंकल्प रहना सेवा में बहुत जरूरी है, तब हमारे मार्क्स जमा होते हैं। हम सेवा के लिए यस कर दें और सेवा करें नहीं, या हम सोचे मैंने सोचा मैं अभी कर दूंगी, मैंने सोचा मैं अभी मैसेज दे दूंगी, और तब तक दूसरे के संकल्प ही चलते रहे। यदि किसी भी कारण से दूसरे के संकल्प चलाए, समझ तो रहे मैंने सेवा की, मैं बाद में कर लूंगी, परंतु वो सेवा नहीं हुई, हमेशा खुद निरसंकल्प रहें ताकि बाबा की याद बनी रहे, दूसरों को भी निरसंकल्प रखें तो सेवाएं। तो सच्चे दिल की सेवा, दुआओं भरी सेवा, ऐसी सेवा का भाग्य हम सभी को या मिलता है। तो इसलिए हम सभी को सेवा करके भाग्य को जमा करना है और दुआओं का खाता भरपूर करके यहाँ से जाना है। ओम शांति।